नमस्कार भारत, शनिवार 3 अक्टूबर, मैं हूं वंदना। बिहार में आज सोनिया गांधी करेंगी चुनावी रैली, लेकिन शामिल नहीं होंगे लालू और नीतीश। कांग्रेस ने कहा ये रणनीति का हिस्सा।
हम लोगों की ये रणनीति है कि 243 सीट पर लालू नीतीश जी जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सोनिया जी और राहुल जी को हम कवर करा सके। जेडीयू के जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं इस जिले में, वो लोग उपस्थित रहेंगे।
दादरी में गोमांस को लेकर हुई हत्या के सिलसिले में लगे समाधान सेना गुट पर आरोप, गुट के नेता ने किया इनकार।
और ये जो आरोप है, मैं संघ परिवार का व्यक्ति हो सकता हूँ, इस कारण से बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में पच नहीं रहा हूँ।
सीरिया में रूस ने हवाई हमले किए तेज। होंगी खेल की खबरें भी, पर पहले सुनिए विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। बिहार में 12 अक्टूबर से चुनाव के लिए मतदान शुरू होंगे, जिसके चलते पार्टियों की चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20 रैलियों को संबोधित करेंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी 9 और उपाध्यक्ष राहुल गांधी 4 रैलियां करेंगे। सोनिया गांधी आज भागलपुर में रैली कर अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में 2 बम धमाके हुए हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पहला धमाका अबूजा से 40 किलोमीटर दूर कूज स्थित पुलिस स्टेशन में हुआ। दूसरा धमाका नयाना में हुआ। इस शहर में पिछले साल 2 विस्फोट हुए थे। विस्फोटकों में मारे गए लोगों की संख्या का फिलहाल पता नहीं लग सका है। शुक्रवार को यह दोनों धमाके स्थानीय समयानुसार रात 10:10 पर कुछ ही देरी के अंतराल में हुए। ग्वाटेमाला में अभी आए समाचार के अनुसार वहां भूस्खलन में 26 लोग मारे गए हैं और कई लोग मलबे के नीचे अभी भी दबे बताए जा रहे हैं। भारत ने औपचारिक रूप से ये वादा किया है कि वो वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 35% तक की कमी लाने की कोशिश करेगा। देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीबीसी को बताया कि ये वादा देश के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा, हालांकि हम इस समस्या का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम इसके समाधान का हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे। इसलिए हमने इस हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में 3.59 अरब टन की कमी की है। मेरा ये कहना है कि वैज्ञानिक तो विज्ञान का पक्ष संभालेंगे, लेकिन हमें भी ये देखना है कि हमें साफ पानी, हवा और पर्यावरण कैसे मिलेगा। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। इससे पहले बीबीसी से हुई बातचीत में उन्होंने माना था कि भारत और खास तौर से दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर रूप ले चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले T20 मैच में भारत को 7 से हरा दिया है। धर्मशाला में हुए इस मैच में भारत के दिए 200 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 2 गेंद रहते ही हासिल कर लिया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 खोकर 199 रन बनाए थे, जिसमें रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला T20 शतक लगाया। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज JP डुमनी को उनके शानदार 68 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोका कोला, वीजा, बडवाइजर और मैकडॉनल्ड्स की मांग के बावजूद फीफा अध्यक्ष से ब्लैटर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अपने वकीलों के जरिए जारी किए गए बयान में ब्लैटर ने कहा कि अब इस्तीफा देना फीफा के हित में नहीं होगा और ना ही इससे सुधारों की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इन चारों प्रायोजक कंपनियों ने बयान जारी कर कहा है कि पिछले हफ्ते उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू होने के बाद ब्लैटर को इस्तीफा दे देना चाहिए था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com के साथ साथ मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वंदना। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिहार से। जैसा कि आपने समाचारों में भी सुना, बिहार में पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को होना है और चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भागलपुर और गया में रैलियां करेंगी, लेकिन उनके सभाओं में महागठबंधन के प्रमुख नेता यानी राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं होंगे। कांग्रेस इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बता रही है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों की घोषणा के बाद बिहार में अपनी पहली रैली की और विकास का नारा बुलंद किया। पूरी रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
बिहार में विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पहली बार पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। सोनिया भागलपुर के कहलगांव और गया के करीमगंज में सभाएं करेंगी। कांग्रेस बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सोनिया की रैली में महागठबंधन के लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता मंच पर नहीं होंगे। कांग्रेस इसे रणनीति का हिस्सा बता रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी कहते हैं,
हम ज्यादा से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज को कवर करना चाहते हैं, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया जी और राहुल जी को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों की भी ये सोच है, ये रणनीति का पार्ट है कि हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा जगह पर इसको कवर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में जा सकें। हम लोगों की ये रणनीति है कि 243 सीट पर लालू नीतीश जी जा सकें और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सोनिया जी और राहुल जी को हम कवर करा सके। आरजेडी और जेडीयू के जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं इस जिले में, वो लोग उपस्थित रहेंगे, लालू जी नहीं रहेंगे।
इसके पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चंपारण रैली में भी लालू और नीतीश ने शिरकत नहीं की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है। मोदी ने कल बांका में रैली की और विकास के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। मोदी ने कहा,
सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो, एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। अभी जो सरकार है उनके हाथ में एक रुपया देना चाहिए क्या? जरा बताइए, देना चाहिए क्या? अगर दिया तो कुछ आपके पास पहुंचेगा क्या? और उनका तो अहंकार ऐसा है कि पता नहीं मैं भेजू तो भी वापस कर दे शायद।
मोदी ने महागठबंधन को निशाने पर लिया तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने उनके दावों पर सवाल उठाए। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी जी, चलो किसी एक ऐसी योजना का नाम बताओ जिससे युवाओं का कल्याण हुआ हो। जनाब, भाषणों से पेट नहीं भरता। लालू ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर भी निशाना साधा।
हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि अमित शाह गुजरात के मामले में किस आरोप में कौन कौन धाराओं में जेल गया था। वहाँ लालू नीतीश की सरकार नहीं थी, भाजपा की ही सरकार थी। कौन कौन धारा में अमित शाह जेल में गया था और शराबुद्दीन कांड में फर्जी मुठभेड़ में इसको कड़ी पार किया गया था, अब इसका जवाब देना होगा तुमको।
बिहार में चुनाव की तारीखें करीब आते ही महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के बयानों की तलखी बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव में हार जीत का फैसला 8 नवंबर को सामने आएगा और उसके पहले कोई भी गठबंधन बयानों की जंग में पीछे नहीं दिखना चाहता।
बिहार की राजनीतिक उठापटक पर रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। उधर बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड मामले में कल अजीबोगरीब मोड़ आया। बेटी शीना की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को गंभीर हालत में मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंद्राणी मुखर्जी को कल दोपहर 2 बजे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। इंद्राणी स्टार इंडिया के प्रमुख रह चुके पीटर मुखर्जी की बीवी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने अब से कुछ ही देर पहले मुंबई में पत्रकार अश्विन अघोर से बात की और पूछा कि फिलहाल डॉक्टर क्या बता रहे हैं।
उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो अभी भी क्रिटिकल है। डॉक्टर्स का कहना है, जेजे हॉस्पिटल के डीन है डॉक्टर टीपी लाहा ने, उनका ये कहना है कि 24 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे और तब तक कुछ बता नहीं सकते जब तक वो 24 घंटे पूरा ऑब्जर्वेशन और पूरी टेस्ट नहीं कर लेते। डॉक्टर्स का मानना फिलहाल ये है कि उन्होंने या तो एंटी डिप्रेशन या एंटी एपिलेप्टिक टैबलेट्स का ओवरडोज ले लिया है जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई है। 24 घंटे तक तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता उस हालत के बारे में।
जी, तो इस बारे में क्या कोई जांच के आदेश हुए हैं कि कैसे ये दवाई उन तक पहुंची?
हाँ, महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि वो आर्थर रोड जेल में थी और पुलिस के मतलब होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी कि उन्हें दवाई मिले, सही दवाई सही वक्त पे मिले। लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने ओवरडोज ले लिया है, तो इस बात में अभी जांच हो रही है कि ये ज्यादा की जो दवाइयां या टैबलेट्स उन तक जो पहुंची या उनके पास जो थी वो कैसे हुआ, इस पर वो जांच अभी होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर कर दिया है।
तो अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं इंद्राणी मुखर्जी, हालत गंभीर, जानकारी दे रहे थे मुंबई से अश्विन अघोर।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में बीफ खाने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सवाल गर्म है कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, ये कौन तय करेगा। बीबीसी इंडिया बोल में यही है बहस का विषय। शनिवार शाम 7:30 बजे अपनी राय रखने के लिए आप हमें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर मुफ्त फोन करें।
बीबीसी इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस विवाद पर अखलाक अहमद नाम के व्यक्ति की मौत के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सोमवार को बिसराड़ा गांव में हुई हिंसा सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि पिछले कई महीनों से इस तरह के हमले इलाके में बढ़े हैं। गांव वालों का ये भी कहना है कि दादरी के इलाके में कम से कम दो ऐसे संगठन हैं जिनका हाल ही में जन्म हुआ है। इनमें से एक है राष्ट्रवादी प्रताप सेना और दूसरा है समाधान सेना। कई गांव वालों का आरोप है कि ये संगठन जुलूस निकालकर युवकों को उकसाने का काम करते हैं। समाधान सेना के प्रमुख गोविंद चौधरी से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने बात की और जानना चाहा कि आखिर उन पर इस तरह हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप क्यों लग रहे हैं।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती सरकार में 8 सेलेटर हाउस, जिसके अंदर एक सेलेटर हाउस में लगभग 10,000 पशु वध की परमिशन मिल गई थी। हम लोगों ने कहा कि देश के अंदर दूध की कमी हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में अगर सेलेटर हाउसों को सरकार परमिशन देगी तो हमारे देश के अंदर पशुधन कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने उन सेलेटर हाउसों को खुलने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उसके बावजूद सरकार हमारी बातों को 10 तारीख को मान गई थी और लगभग 11 तारीख को हम लोग आंदोलन को खत्म, लेकिन किसी ने जैन मुनि जी को थोड़ा भड़काया और उन्होंने कुछ अपने प्रवचन में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो प्रशासन को अच्छे नहीं लगे। उस आंदोलन में हम लोगों को कारावास हुआ। बेसिकली हो सकता है प्रशासन के मस्तिष्क में मेरे पुरानी गतिविधियों को या मेरे किए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते कि हो सकता है कि ये इस तरह से यहाँ भी कुछ सोचता हो, लेकिन मेरा तो अभी यहाँ भी 2-3 घटनाएं हुई उनमें भी प्रशासन ने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा मानना नहीं है। कहीं भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो भी कोशिश करता है वो वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ।
क्या हिंदू आबादी में मुसलमान की दुकान या मुसलमानों की आबादी में हिंदू की दुकान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
देखिएगा, ये हमारा पुराना पौराणिक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ कामों को हम एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते, और ये तो हमारे नीतिकर और राजनीतिक लोगों का विषय है। मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है कि हम दोनों जो वर्ग हैं एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कटुता और कठोरता नहीं बरतनी चाहिए। मैं इस विषय पे ये भी कहना चाहता हूँ कि इतना जो मुस्लिम समुदाय है इतना बिसाड़े में और बिसाड़े के आसपास के गांवों में नहीं रहता जितना मेरे खुद के गांव में रहता है। पूर्व में पिताजी भी प्रधान रहे हैं, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बहुत शालीन और बहुत सभ्य रही है। इसी कारण से हम लोग एक साधारण से परिवार में साधारण से किसान होने के नाते भी हम लोग राजनीतिक दायित्व भी ठीक से निर्वाह कर रहे हैं और सामाजिक भी। हमारे गाँव में लगभग 60% हमारी ग्राम पंचायत में नूरपुर में 60% मुस्लिम रहता है।
कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों, क्या कारण?
क्योंकि 6 वर्ष तक मैं प्रचारक रहा हूँ आरएसएस का और लगभग मैंने समाज के काम को बहुत निचले स्तर तक किया है, और ये जो आरोप हैं, मैं संघ परिवार का व्यक्ति हो सकता हूँ, इस कारण से बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में पच नहीं रहा हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है।
समाधान सेना के प्रमुख गोविंद चौधरी से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को आज 1 साल पूरा हो रहा है। मोदी ने पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम किया था। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार से बात की और पूछा कि मन की बात के जरिए लोगों तक पहुंचने की मोदी की कोशिश कितनी कामयाब हुई है।
उन्होंने एक शासक के नाते प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह से इस्तेमाल शुरू किया है वो एक अनूठा था और इसका उनको लाभ भी मिल रहा है। लेकिन मैं जब 1 साल पूरा होने पर इस पूरे कार्यक्रम को देखता हूँ तो ये महसूस करता हूँ कि जितना जोर शोर से ये शुरू हुआ था और इतना प्रभावशाली ढंग से इसका दिख रहा था, प्रभाव दिख रहा था लोगों में, वो धीरे धीरे उसका उतरता चला जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पक्ष है जो इसकी लोकप्रियता में बाधक बन रहा है कि जिन मुद्दों पर जनता सुनना चाहती है, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं।
विपक्ष भी नरेंद्र मोदी पर लगातार ये आरोप लगाता है कि वो मन की बात में जनता के मन की बात नहीं करता, अहम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं।
ये मन की बात जो एक आपने पद लिया, नाम लिया इस कार्यक्रम का, जो शीर्षक रखा, उससे वो जुड़ता नहीं है। जब आप मन की बात लोगों के साथ नहीं करते हैं तो लोगों को फिर ये एक औपचारिक सा कार्यक्रम लगता है। और भी इससे जुड़े हुए मसले हैं जिन पर प्रश्न उठाए हैं विपक्षी दलों ने। मसलन आप हैं कि रक्षाबंधन के पहले जो एक उनका प्रसारण था उसमें उन्होंने रक्षाबंधन की तो बात की लेकिन रमजान की बात नहीं की। तो एक ये भी पहलू है कि प्रधानमंत्री एक धार्मिक समुदाय का तो ख्याल करते हैं लेकिन एक को पूरी तरह से अनदेखा कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं।
एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर कितनी आप इसको अहमियत देते हैं कि प्रधानमंत्री रेडियो पर बोलते हैं, महीने में एक बार बात करते हैं, तो रेडियो माध्यम का इससे कितना भला होगा?
मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम की वजह से एक बार फिर से लोगों ने रेडियो की तरफ देखना शुरू कर दिया। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रमुख अगर इस माध्यम पर लोगों से संवाद करता है तो निश्चित रूप से उस माध्यम की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोकप्रियता बढ़ती है और ये हम देख रहे हैं। लेकिन अगर ये जो जिन पहलुओं की बातचीत हमने की है अगर उस तरह के एलिमेंट्स उस कार्यक्रम में आते रहते मुझे लगता है कि और अहमियत बढ़ती।
तो एक साल का हुआ कार्यक्रम मन की बात और आकलन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का, बात करते हैं सीरिया की। रूस लगातार सीरिया में हवाई हमले कर रहा है। सीरिया ने अलगाववादी गुटों के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप के रूस के फैसले का स्वागत किया है। रूस की संसद ने बुधवार को सीरिया में हवाई हमले करने की मंजूरी दी थी और उसके बाद से ही रूस के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में कई हमले किए हैं। उधर अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन देशों ने रूस को सीरिया में इस्लामी आतंकियों पर हवाई हमले फिलहाल रोकने को कहा है, जबकि सीरिया के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि सिर्फ हवाई हमलों से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अमल चौधरी।
रूस ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के विपक्षियों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने कहा कि उसने गुरुवार को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के 12 ठिकानों पर 18 हमले किए हैं। इसमें आईएस के गढ़ माने जाने वाले रक्का के साथ साथ अलेप्पो, हामा और इदलिब पर भी हमले किए गए जहां आईएस की अधिक पकड़ नहीं है। वहीं अमरीका के नेतृत्व में आईएस पर हमला करने वाले गठबंधन ने इसके लिए रूस की आलोचना की है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इस हमले में आईएस का एक ट्रेनिंग कैंप नष्ट हुआ है और 12 लड़ाके भी मार गिराए गए हैं। कार्यकर्ताओं और शहर में रहने वालों के अनुसार आईएस ने और अधिक हवाई हमले होने के डर से शुक्रवार की नमाज रद्द कर दी और मस्जिदों को खाली कर दिया। वहीं कुछ जगहों पर फ्री सीरियन आर्मी के रेडियो टावरों को भी निशाना बनाया गया। फ्री सीरियन आर्मी असद सरकार का विरोध करती आई है। सीरिया के विदेश मंत्री वालिद अल मुअल्लम ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति वार्ता की पहल में शामिल होने को तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा,
Terrorism cannot be fought only from the air and all of the previous operations to combat it have only...
सीरिया बातचीत के लिए तैयार है। विशेष दूत स्टाफन डी मिस्तूरा ने हमसे कहा है कि बातचीत में विचारों का आदान प्रदान होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सीरिया मजबूत है और चरमपंथ से लड़ने के लिए सीरिया की सेना और उसके लोग तैयार हैं। सीरिया के विदेश मंत्री वालिद अल मुअल्लम के शब्द। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के मुख्य विपक्षी माने जाने वाली सीरियन नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष जॉर्ज साबरा ने कहा कि ये सब कुछ रूस अपने फायदे के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा,
They want to support Bashar Assad personally because now they
रूस हवाई हमले राष्ट्रपति असद की मदद के लिए कर रहा है, आईएस के खात्मे के लिए नहीं। वो सीरिया में ईरान का हस्तक्षेप चाहते हैं। वो जानते हैं कि जब नया सीरिया बनेगा तो सब कुछ ईरान को मिलेगा जिसमें उनका भी हिस्सा होगा। सीरिया के मुख्य विपक्षी सीरियन नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष जॉर्ज साबरा शुक्रवार को दिए एक संयुक्त ज्ञापन में अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की और सऊदी अरब ने कहा कि रूस की ओर से लगातार हो रहे हमलों से सीरिया की स्थिति और बिगड़ सकती है। आरोपों को गलत बताते हुए रूस ने दावा किया है कि वो केवल इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को ही निशाना बना रहा है। एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी के मुताबिक ये हमले 3 से 4 महीनों तक चल सकते हैं।
तो सीरिया को लेकर तमाम देशों में खींचतान लगातार चल रही है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन तमाम खबरों पर जो आज दिन भर सुर्खियों में रह सकती हैं।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाली है। इंडस्ट्री में फिल्म लेखकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए इस हड़ताल में निर्देशक, कलाकार, संगीत निर्देशक, जूनियर आर्टिस्ट सभी हिस्सा लेंगे। इन सभी का कहना है कि फिल्म के निर्माता लेखकों का हक उन्हें नहीं देते हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भागलपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी बिहार में एक महीने के भीतर 4 रैलियों को संबोधित करेंगी, तो वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी 1 महीने में 9 रैलियां करेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे आज जापान पहुंचेंगे। 4 दिवसीय इस यात्रा के दौरान वो जापान के शाही परिवार सहित प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात में संघीय राष्ट्रीय परिषद के चुनाव होंगे। राष्ट्रीय चुनाव समिति का कहना है कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाले इस चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस परिषद में 40 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 का चुनाव जनता वोटिंग के जरिए करती है, वहीं अन्य 20 का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इंडियन सुपर लीग का दूसरा संस्करण रविवार से शुरू हो रहा है। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। यह प्रतियोगिता 6 दिसंबर तक चलेगी। पिछले संस्करण में ये प्रतियोगिता एटलेटिको डे कोलकाता ने जीती थी।
और अब बारी है खेल समाचारों की। खेल की दुनिया की हफ्ते भर की हलचल समेट कर हम लाए हैं कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से।
चौथा बॉल अरविंद का भागते हुए लेंथ बॉल, लेकिन जेबी डुमिन ने ये मैच जीते हुए सिंगल हैंडली मुख्य मारते हवा में साउथ अफ्रीका ये मैच जीत चुका है इंडिया से।
जी हाँ, भारत दौरे पर अभ्यास मैच में नए नाम वाले खिलाड़ियों से हारने वाली दक्षिण अफ्रीका ने अपना असली खेल कल धर्मशाला में खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दिखाया और भारत को 2 गेंद शेष रहते 7 विकेट से करारी मात दी। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 200 रनों की जरूरत थी, ऐसे में जेपी डुमिनी ने 34 गेंदों पर 1 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए। उनका बखूबी साथ फरहान बेहरदीन ने देते हुए नाबाद 32 रन बनाए। एबी डिविलियर्स ने भी 51 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों के हौसलों को पहले ही पस्त किया। दक्षिण अफ्रीका की इस जीत ने भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की शतकीय पारी पर पानी फेर दिया। रोहित शर्मा ने केवल 66 गेंदों पर 12 चौके और 6 छक्के जमाते हुए 106 रन बनाए। उनके अलावा विराट कोहली के 43 रन की मदद से भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए। दोनों टीमों के बीच दूसरा 2020 मैच अब 5 तारीख को खेला जाएगा। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त ले ली है। उधर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पिछले दिनों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम हासिल किया और अब वो साल 2017 में इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलती नजर आएगी। इस टूर्नामेंट में दुनिया की शीर्ष 8 टीमें ही हिस्सा लेती हैं। अब इनमें बांग्लादेश के अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग लेगी। बांग्लादेश ने आईसीसी रैंकिंग के आधार पर वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ा। ये पहला अवसर होगा जब वेस्टइंडीज की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रहेगी। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड में कुल मिलाकर 6 मैच खेलेगी। इसी कड़ी में उसने कल ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ए को 3-1 से मात दी। अब भारत और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरा मैच आज खेला जाएगा, जबकि 6 तारीख को भारत न्यूजीलैंड से खेलेगा, तभी भारत की असली परीक्षा होगी। और अब बात फुटबॉल की। भारत में अपनी तरह की एक अलग ही फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत आज से शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मैच दिल्ली में एटलेटिको डी कोलकाता और चेन्नईयन फुटबॉल क्लब के बीच होगा। इस लीग में इन दोनों टीमों के अलावा एफसी गोवा, दिल्ली डायनामोज, मुंबई सिटी, पुणे सिटी, केरला ब्लास्टर्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब शामिल हैं। इन क्लबों में दुनिया भर के देसी विदेशी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। इस लीग को लेकर फुटबॉल विशेषज्ञ नोवी कपाड़िया कहते हैं,
3-4 खास बातें हैं। ये तो पहली दफा कि जो 8 क्लब है उन्होंने अपने आप प्लेयर चुने हैं, और ये भी दिख गया, जैसे ब्राजील का कोच है जीको एफसी गोवा में, तो 7 खिलाड़ी गोवा के हैं। पीटर टेलर है केरला ब्लास्टर्स में, उसने इंग्लैंड से ज्यादा खिलाड़ी लिए, वो इंग्लैंड के कोच है। डेविड प्लेट जो इंग्लैंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मिडफील्डर थे, पॉल गैस्कॉइन के साथ खेलते थे एफसी पुणे सिटी के लिए, तो उन्होंने भी ज्यादातर इंग्लैंड के प्लेयर लिए। एंटोनियो हबास एटलेटिको डी कोलकाता के है, तो उन्होंने ज्यादा स्पेन के प्लेयर लिए। अब क्लबों ने वो खिलाड़ी चुने, चाहे इतने महान नाम ना हो, लेकिन कम से कम वो फील्ड पे तो उतर के अब हुनर और अपना स्किल दिखा सकेंगे। इस समय कुछ 28 देशों से खिलाड़ी आए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा ब्राजील से है, 18 ब्राजील से है और 15 स्पेन से। तो क्लब्स ने काफी ध्यान से चुनाव किया है, काफी सोच समझ के किया है।
और अब बात टेनिस की। शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी के रूप में खेल रही भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में जोड़ी ने चीन ताइपे की हाओ चिंग यान और युंग यान चान की जोड़ी को बेहद आसानी से 53 मिनट में 6-2, 6-1 से मात दी। अब फाइनल में सानिया हिंगिस का सामना रोमानिया की इरेना केमिला बेगू और मोनिका निकुल्से क्यू की जोड़ी से होगा। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
तो आदेश कुमार गुप्त से आपने खेल समाचार तो सुन लिए, और अब स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अखबारों की समीक्षा करने का समय आ गया है और स्टूडियो में मौजूद हैं अमल चौधरी।
अगर आज के मुख्य अखबारों के पहले पन्ने की बात करते हैं तो सभी की जो है खबर लगभग अलग अलग है। अंग्रेज़ी अखबारों का रुख करें तो द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को जो रैली हुई थी उसको अपनी मुख्य खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि बिहार चुनावों के लिए विकासवाद मोदी की पंचलाइन। वहीं पायनियर ने इस रैली में मोदी के भाषण की एक पंक्ति को अपना शीर्षक बनाया है। अखबार ने लिखा है कि जब मोदी ने कहा कि आपने सब कुछ करके देख लिया, एक बार विकासवाद को आजमा कर देखिए। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के जलवायु कार्य योजना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है कि 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी करेगा। वहीं द हिंदू ने भी इसी खबर को प्रमुख खबर बनाया है। शीर्षक दिया है कार्बन उत्सर्जन कम करेगा भारत। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी खबर को लिया है जिसमें वो लिखता है भारत ने वादा किया कि 2030 तक 35% कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। हालांकि उसकी मुख्य खबर काले धन पर है, इसमें उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक बयान को अपना शीर्षक बनाया है। अखबार लिखता है जिन लोगों ने अपने काले धन के बारे में जानकारी नहीं दी है वो इसका परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं अगर हिंदी अखबारों का रुख करें तो यहाँ भी लगभग सभी अखबारों का रुख कुछ अलग है। नई दुनिया लिखता है सीबीआई ने की मायावती से पूछताछ। वहीं दैनिक जागरण ने भी इसे ही अपनी मुख्य खबर बनाया है। अखबार लिखता है मायावती से पूछताछ। अमर उजाला ने भी इसी को प्रमुखता से लिया है और लिखा है मायावती से सीबीआई ने की 8 घंटे पूछताछ।
तो काफी इस
जी
खबर को
मायावती को काफी अहमियत दी गई है हिंदी अखबारों में खास करके। वहीं एनबीटी ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो राजीव चौक पर एक शख्स ने खुद को गोली मार ली, हालांकि उसको समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, उसको अपनी मुख्य खबर बनाया है।
जी
काफी वहां पे काफी भीड़ भी रहती है, काफी व्यस्त स्टेशनों में से एक है वो। और उसमें अखबार ने शीर्षक दिया है स्टेशन पर फायरिंग ने खोली मेट्रो स्टेशन की पोल। वहीं हिंदुस्तान हिंदी ने दादरी हत्याकांड में मुख्य खबर बनाया है और अखबार ने इसको शीर्षक दिया है दादरी कांड पर सियासी जंग तेज।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक बार नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। बिहार में 12 अक्टूबर से चुनाव के लिए मतदान शुरू होंगे जिसके चलते पार्टियों की चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। सोनिया गांधी आज भागलपुर में रैली कर अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में 2 बम धमाके हुए हैं जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पहला धमाका अबूजा से 40 किलोमीटर दूर कूज स्थित पुलिस स्टेशन में हुआ, वहीं दूसरा धमाका नयान्या में हुआ। इस शहर में पिछले साल 2 विस्फोट हुए थे। ग्वाटेमाला में आए भूस्खलन में 26 लोग मारे गए हैं और कई लोग मलबे के नीचे अभी भी दबे बताए जा रहे हैं। भारत ने औपचारिक रूप से वादा किया है कि वो वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 35% तक की कमी लाने की कोशिश करेगा। देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीबीसी से ये बात कही। दक्षिण अफ्रीका ने पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। धर्मशाला में हुए इस मैच में भारत के लिए 200 रन का लक्ष्य दिया गया था जिसे अब दक्षिण अफ्रीका ने 2 गेंद रहते ही हासिल कर लिया।
जी, और कार्यक्रम नमस्कार भारत में आज इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। आज स्टूडियो संभालने का काम किया हेमंत कुशवाहा ने। सभी साथियों के साथ मुझे वंदना को दीजिए अनुमति।